जय जय नारायण यशोदा यशोदानन्दना व्रज जय नारायण यशोदा यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जैना बल्लभा गिरिवर धारी गोपी जैना गोपी जैना बल्लभा गिरिवर धारी गोपी जैना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे हरे
सभी भगवान का नाम कीजिए
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे
जय राधा रश्मि हरी राय
hari rai daras bihari radhe jay sita ram jay sita ram jay sita ram lakshman hanuman jay gauranitai jay gauranitai jay gauranitai jay gauranitai prabhupad 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 Hari bol, Hari bol, Hari bol, Hari bol, Hari bol.
Shri Hari Naam Sankirtana ki jai. Jai Vishnupad Paramahansa Paribraj Gacharya Stutrastha Shri Srimad. अवचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय इस्कन प्रतिष्ठाता आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज गचार्य नित्यल प्रविष्ट अष्टुतरस्थ श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ शिव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सड़ गोस्वामी प्रभु की जय राधा कुंड श्याम कुंड द्वास परात्म कुंड जब मंडली धाम की जय भगवत बान श्रीमद भगवत गीता की जय श्री श्री राधा रास हरि भगवान की जय श्रील प्रभु पाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं हरे कृष्णा तो आज हम क्रमानुसार श्रीमद् भगवद गीता 13वें अध्याय का 5वां नंबर श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे अध्याय का नाम है प्रकृति पुरुष तथा चेतना श्लोक संख्या 5 श्लोक ब्लैकबोर्ड में लिखा गया है मैं पहले उच्चारण करूंगा उसके बाद सभी मेरे पीछे पीछे दोहराने के लिए प्रयास कीजिए ऋषिर्भिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधै पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चिते ऋषिर्भिर्बहुधा गीतं छंदो भीर विविधि पृथक ब्रह्मसूत्र पदेश्चैव हेतु मद्भीर विनिश्चितै ऋषिर भीर बहुधा गीतं छंदो भीर विविधि पृथक ब्रह्मसूत्रपदेश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः तुषीर्भिर्बहुधा गीतं छन्दोर्भिर्विविधैः पृथक् श्लोक का शब्द अनुवाद ऋषि भी बुद्धिमान ऋषियों द्वारा बहुधा अनेक प्रकार से गीतम वर्णित छंदो भी वैदिक मंत्रों द्वारा विविधई नाना प्रकार के पृथक भिन्न भिन्न ब्रह्मसूत्र वेदांत के पदई नीति वचनों द्वारा च भी एव निश्चित रूप से हेतु मद भी कार्य कारण से विनिश्चितई निश्चित श्लोक का अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तात्पर्य, इस ज्ञान की व्याख्या करने में भगवान कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण है। फिर भी विद्वान तथा प्रामाणिक लोग सदैव पूर्ववर्ती आचार्यों का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। कृष्ण आत्मा तथा परमात्मा की द्वैतता तथा अद्वैतता संबंधी इस अतीव विवादपूर्ण विषय की व्याख्या वेदांत नामक शास्त्र का उल्लेख करते हुए कर रहे हैं, जिसे प्रमाण माना जाता है। सर्वप्रथम वे कहते हैं यह विभिन्न ऋषियों के मतानुसार है। जहाँ तक ऋषियों का संबंध है, श्री कृष्ण के अतिरिक्त व्यासदेव जो वेदांत सूत्र के रचयिता हैं महान ऋषि हैं, और वेदांत सूत्र में द्वैत की भलीभांति व्याख्या हुई है। व्यासदेव के पिता पराशर भी महर्षि हैं और उन्होंने धर्म संबंधी अपने ग्रंथों में लिखा है अहम त्वं च तथा अन्ये, तुम मैं तथा अन्य सारे जीव अर्थात हम सभी दिव्य हैं। भले ही हमारे शरीर भौतिक हो, हम अपने अपने कर्मों के कारण प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर पतित हो गए हैं। फलतः कुछ लोग उच्चतर धरातल पर हैं और कुछ निम्नतर धरातल पर हैं। ये उच्चतर तथा निम्नतर धरातल अज्ञान के कारण है और अनंत जीवों के रूप में प्रकट हो रहे हैं, किंतु परमात्मा जो अच्युत हैं तीनों गुणों से अदूषित हैं और दिव्य हैं। इसी प्रकार मूल वेदों में विशेषतया कठोपनिषद में आत्मा परमात्मा तथा शरीर का अंतर बताया गया है। इसके अतिरिक्त अनेक महर्षियों ने इसकी व्याख्या की है, जिनमें पराशर प्रमुख माने जाते हैं। छंदो भी शब्द विभिन्न वैदिक ग्रंथों का सूचक है। उदाहरणत तृतीय उपनिषद जो यजुर्वेद की एक शाखा है, प्रकृति जीव तथा भगवान के विषय में वर्णन करती है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, क्षेत्र का अर्थ कर्म क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञ की दो कोटियां हैं, जीवात्मा तथा परम पुरुष। जैसा कि तृतीय उपनिषद में 2.9 कहा गया है, ब्रह्मा पुच्छंग प्रतिष्ठा, भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन अन्न पर निर्भरता या ब्रह्म की भौतिक बाधी अनुभूति है। अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूप में परम सत्य की अनुभूति करता है। ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है जिसे विज्ञानमय रूप कहते हैं, जिसमें जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। इसके पश्चात परम अवस्था आती है जो आनंदमय है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति है। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं जिन्हें ब्रह्म पुच्छंग कहा जाता है। इनमें से प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय अवस्थाएं जीवों की कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित होती है। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे हैं और आनंदमय हैं। वेदांत सूत्र भी परमेश्वर को आनंदमय अभ्यासात कहकर पुकारता है। भगवान स्वभाव से आनंदमय हैं। अपने दिव्य आनंद को भोगने के लिए वे विज्ञानमय, प्राणमय, ज्ञानमय तथा अन्नमय रूप में विस्तार करते हैं। कार्यकलापों के क्षेत्र में जीव भोक्ता क्षेत्रज्ञ माना जाता है, किंतु आनंदमय उससे भिन्न होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि जीव आनंदमय का अनुगमन करने में सुख मानता है तो वह पूर्ण बन जाता है। क्षेत्र के ज्ञाता क्षेत्रज्ञ रूप में परमेश्वर की और उसके अधीन ज्ञाता के रूप में जीव की तथा कार्यकलापों के क्षेत्र की प्रकृति का यह वास्तविक ज्ञान है। वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र में इस सत्य की गवेषणा करनी होगी। यहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि ब्रह्म सूत्र के नीति वचन कार्य कारण के अनुसार सुंदर रूप में व्यवस्थित है। इनमें से कुछ सूत्र इस प्रकार, न व्यद श्रुते 2.3.2, नात्म श्रुते ही 2.3.18 तथा परांतु तत्श्रुते ही 2.3.14। प्रथम सूत्र कार्यकलापों के क्षेत्र को सूचित करता है, दूसरा जीव को और तीसरा परमेश्वर को जो विभिन्न जीवों के आश्रय तत्व है। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येनं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज का ये संध्याकालीन भगवद गीता सत्र में आए हुए सभी भक्तों को, सभी दर्शनार्थियों को हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कन जू सखा के तरफ से, राधा रास बिहारी जी मंदिर के तरफ से हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। आप सभी यहाँ पे आए हैं अपने बहुमूल्य समय निकाल के सत्संग करने के लिए, भगवान का कथा श्रवण करने के लिए, ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए, इसलिए हम आप सबका आभारी हैं। हरे कृष्ण। तो इसके पिछले श्लोक में हम श्रवण किए हैं कि क्षेत्र किसको कहते हैं और क्षेत्रज्ञ किसको कहते हैं, एवं दोनों का जो मुख्य अधिकारी कौन है। इस शरीर को क्षेत्र कहा जाता है एवं शरीर का जो मालिक है आत्मा उसको क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। इसके बारे में हम पिछले श्लोक में श्रवण किए हैं। उसके तीसरा श्लोक में, चौथा श्लोक में भी हम, काल जो श्लोक गया उसमें भी हम ये सुने हैं कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और इस उसके क्या प्रभाव है। तो आज का जो श्लोक है उसमें भगवान बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान है ये गुरु शिष्य परंपरा से आया है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षय विदुः, गुरु शिष्य परंपरा से आया है, इसमें कोई भी ऐड नहीं किया गया। जो भगवान कृष्ण अर्जुन को बताए हैं वही भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को बताए, ब्रह्मा जी नारद जी को, नारद जी व्यास से गुरु शिष्य परंपरा से आए। यहाँ पे कहा गया है इस ज्ञान की व्याख्या करने में भगवान कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण है, फिर भी विद्वान तथा प्रामाणिक लोग सदैव पूर्ववर्ती आचार्यों का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। जो भी हम आज श्रवण कीर्तन कर रहे हैं भगवान का कथा, भगवत गीता का ज्ञान, भागवत का ज्ञान, ये गुरु आचार्य गुरु शिष्य परंपरा से आया है। ब्रह्मा जी नारद, कृष्ण ब्रह्मा जी को बोले, ब्रह्मा जी नारद जी को बोले, नारद व्यासदेव, व्यासदेव माध्व, ऐसा गुरु शिष्य परंपरा से आया है। इसलिए इसमें कोई भी, जैसा एक पेड़, एक आम का पेड़ में आप अगर कोई चढ़ के आम अगर अपने हाथ से उसको डाली से निकाल के अगर नीचे लाता है तो उसका पूरा सुरक्षित रहता है। अगर ऐसा यहाँ पत्थर फेंक के आम निकालेंगे तो क्या आम टूटने का चांस रहता है? उसी प्रकार ये जो ज्ञान है ये गुरु शिष्य परंपरा से आया है। इसलिए कहा जाता है जाओ भागवत पढ़ वैष्णव स्थाने, वैष्णव के मुखारविंद से अगर भगवान का कथा श्रवण कीर्तन करेंगे तो उसका हमारा प्रभाव पड़ सकता है। व्यासदेव के पिता पराशर भी महर्षि हैं और उन्होंने धर्म संबंधी अपने ग्रंथों में लिखा है अहम तुम च तथान्य, तुम मैं तथा अन्य सारे जीव अर्थात हम सभी दिव्य हैं, भले ही हमारे शरीर भौतिक हो। कहा जाता है संसार में जितना भी सृष्टि है कोई भी गलत नहीं है। भगवान का तीन मुख्य शक्ति है, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति एवं तटस्था शक्ति। ये भौतिक प्रकृति बहिरंगा शक्ति का अंश है। वह अंतरंगा शक्ति क्या है? जो भगवान के धाम पे कार्य करता है, अंतरंगा शक्ति। एवं तटस्था शक्ति क्या है? ये जीव है, आत्मा। तो हम जैसा नदी में हम देखते हैं कभी कभी एक एक स्थान में बालू का ढेर लग जाता है तो एक तरफ जल है फिर बीच में स्थल है, तट है, वो बालू का ढेर। तो हम क्या है, तट में है, हम चाहेंगे तो भगवान के धाम जा सकते हैं, चाहेंगे तो हमारा स्थिति नीचे आ जा सकता है, हम नरक गति भी लाभ कर सकते हैं। लेकिन इसलिए भगवान कहते हैं जानति देवव्रता देवान पितृ जानति पितृव्रतान मज्जाजिनो अपिमान, जो देवताओं को पूजा करता है और देवलोक को जाता है, जो पितृपुरुष को पूजा करता है पितृपुरुष लोक जाता है, एवं जो मेरे को पूजा करता है वो मेरे पास आता है। तो भगवान के पास जाना ही जीवन का लक्ष्य है। बाकी जो भी देवा देवी का हम उपासक हैं, कोई शिव जी को पूजा करता है, कोई माता दुर्गा को पूजा करता है, वो देवा देवी जो क्या है उनको भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम कैसा हो इसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। हम कुछ भौतिक चीज मिलता है लेकिन वो भौतिक चीज कुछ समय के बाद हमारे पास हर समय नहीं रहता। इस संसार में जो कुछ हम देख रहे हैं हमारे पास है वो कुछ समय के लिए है, लेकिन जो भगवान की जो भक्ति है वो परमानेंट बैंक बैलेंस है। अगर इस समय इस जीवन में अगर भक्ति में हम पूर्णतः लाभ नहीं भी किए एवं शरीर छूट गया तो भगवान फिर दोबारा वही एक भक्तों के परिवार में जन्म देते हैं जहां पे हम भक्ति कर सकते हैं। इसलिए भक्ति कभी भी निष्क्रिय नहीं है, भक्ति कभी भी उसका कुछ क्षति नहीं होता। इसलिए हमको जेन तेन प्रकार भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम श्रद्धा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस भौतिक ब्रह्मांड जो है, इस पृथ्वी लोक जो है, यहाँ पे इसको कर्म भूमि कहा जाता है। यहाँ पे व्यक्ति पाप कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है, लेकिन दोनों पुण्य कर्म करता है तो ऊर्ध्वगति उसको लाभ होता है, महलोक स्वर्ग लोक जाता है, एवं जब पाप कर्म करता है तो वो नीचे लोक जाता है। लेकिन कोई पुण्य कर्म करे या पाप कर्म करे दोनों इस संसार में ही हमको रहना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई अगर भक्ति करता है, भक्ति कोई पुण्य नहीं कि पाप नहीं है, और भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ा रहा है, भगवान का श्रवण कर रहा है, भगवान का कीर्तन कर रहा है, भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है, ये क्या है, ये आत्मा का आहार है। जैसा एक तोता पिंजरा के अंदर है लेकिन तोता को कलर कर रहे, लेकिन ये पिंजरा को कलर करते हैं, लेकिन तोता को अगर आहार नहीं देंगे तो क्या होगा? कुछ समय के बाद तो तोता शरीर छोड़ देगा, पिंजरा रह के क्या फायदा? उसी प्रकार इस शरीर रूपी पिंजरा में के अंदर तोता है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अहम आत्मा गुड़ा कैसा, हे अर्जुन इस सृष्टि का जो भी देख रहे हो सबका बीज प्रदान करे पिता मैं हूं, अहम बीज प्रद पिता। तेसंग सतत युक्तानंग भजतंग प्रतिपूर्वकम नदामी बुद्धि जोगंतंग, जो मेरे साथ हर समय युक्त होकर रहता है मैं उसको बुद्धि प्रदान करता हूं। कैसा बुद्धि? जिस बुद्धि के माध्यम से वो मेरे से प्रेम बढ़ा सके, श्रद्धा बढ़ा सके। भगवान कृष्ण खुद गीता में बता रहे हैं। इसलिए हम इस भौतिक संसार में रहते हुए भी हम आनंद में रह सकते हैं अगर भगवान को आश्रय करेंगे तो। इसलिए यहां पे कहा गया है कि ये भौतिक संसार में व्यक्ति अगर शुद्ध भक्तों के आश्रय में, वैष्णव के आश्रय में अगर कृष्ण चेतना अभ्यास करता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। जन्मलाभ परपुंसा अंते नारायण स्मृति। भगवान स्वभाव से आनंदमय है। भगवान कृष्ण कोई भी व्यक्ति कितना तनाव में आए, कितना कष्ट में आए, भगवान का अगर रूप दर्शन कर लेता है तो हर कष्ट चला जाता है। क्योंकि हम जीवात्मा परमात्मा का अंश विशेष है। परमात्मा जैसा मछली पानी में रहते हुए ही आनंद पा सकता है, दूसरे में कभी भी आनंद नहीं पा सकता, चाहे उसको जितना भौतिक सुख का उपभोग का सामग्री क्यों ना दे, कितना अच्छा खाना क्यों ना दे, कभी सुख नहीं रह सकता, उसको पानी के अंदर ही आनंद पा सकता है। उसी प्रकार आत्मा जब तक परमात्मा के साथ संपर्क स्थापन नहीं किया है कभी वो पूर्णतः लाभ नहीं कर सकता। भगवान कह रहे हैं मैवांश जीवलोक जीवभूत सनातन, सनातन हिसाब से सभी जीव मेरा अंश विशेष है। भगवान कृष्ण अन्नमय प्राणमय ज्ञानमय अवस्था में जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित होती है। यहां पे कहा गया है भगवान कृष्ण ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षण से आगे बढ़कर चिंतन अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है, तब ब्रह्म के उच्चतर अनुभूति होती है जिसे विज्ञानमय रूप कहते हैं, जिसमें जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। इसके पश्चात परम अवस्था आती है जो आनंदमय होती है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति होती है। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं। आनंद अन्नमय प्राणमय ज्ञानमय अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित होती है। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे हैं और आनंदमय हैं। वेदांत सूत्र भी परमेश्वर को आनंदमय अवस्था कहकर पुकारता है। भगवान स्वभाव से आनंदमय है, अपने दिव्य आनंद को भोगने के लिए और विज्ञानमय प्राणमय ज्ञानमय तथा अन्नमय रूप में विस्तार करते हैं। देखिए कोई भी व्यक्ति कोई भौतिक स्तर में कितना बड़ा विद्वान क्यों ना हो, कितना बड़ा इंटेलिजेंट क्यों ना हो, अगर भगवत गीता को अगर समझ नहीं पाएगा तो उसका विज्ञान का कुछ व्यर्थ है। भगवान कहते हैं बुद्धिमान किसको कहते हैं? मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु श्रवत आत्मवत सर्वभूतेषु जप पश्यति स पंडिता। पंडित व्यक्ति किसको कहते हैं? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में, प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान को दर्शन करता है। दूसरे का संपत्ति को एक पत्थर का टुकड़ा जैसा समझता है, वही सभी स्त्रियों को अपने मां के दृष्टि में देखता है, वही सबसे बड़ा बुद्धिमान है। भागवत गीता चाणक्य पंडित कहते हैं। तो जो सबसे एक बार प्रभुपाद जी भगवान की कथा कर रहे थे, उनका एक शिष्य प्रभुपाद जी का एक डिसिपल प्रभुपाद जी को बोले, प्रभुपाद जी हमारे वैज्ञानिक लोग चंद्र पृष्ठ तक पहुंच गए हैं। वहां पे प्रभुपाद जी महाराज मुस्कुराए, बोले कि वहां पे क्या लेके आए, वहां पे जल है क्या, वहां पे कुछ जीव है, कुछ पानी है वहां पे, वहां पे बोले कुछ नहीं, वो केवल बाली का कुछ पत्थर का टुकड़ा लेके आए। प्रभुपाद जी उस समय उनके एक शिष्य प्रभुपाद जी के लिए खिचड़ी लेके आया, भगवान को भोग लगा के लेके आए। तो प्रभुपाद जी बोले वो वैज्ञानिक लोगों से लाखों गुना इंटेलिजेंट नहीं है, क्योंकि वो ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाया है। देखिए भगवान के लिए थोड़ा सा भी कोई सेवा करता है, भगवान कभी भी उसको भूलते नहीं। स्वल्पाप्यस्य धर्मस्य त्रायते महत्वयात्, थोड़ा सा भी जो मेरे को भक्ति करता है मैं उसको भयंकर स्थिति से रक्षा करता हूं। इसलिए कोई भी व्यक्ति, भगवान तो कह रहे हैं ईशा वास्यम इदम सर्वम जत किंचित जगत जगत, इस संसार में जो कुछ देख रहे हो सब मेरे से सृष्टि हुआ है। जैसा आप हम देखे हैं जब सेतुबंध बांध रहे थे तो एक गिलहरी अपने मुख से थोड़ा सा जितना हो सके उतना छोटा छोटा पत्थर लेके समुद्र में फेंक रहे थे, तो हनुमान जी उनको डांट रहे हैं, देखो हम इतना बड़े बड़े पत्थर डाल रहे हैं, तुम छोटा अपने मुख से छोटा छोटा पत्थर डाल रहे हो, इसमें क्या होगा। तो तुरंत आके प्रभु राम जी के पास शिकायत किए कि प्रभु मैं मेरे सक्षम जितना है मैं उस हिसाब से सेवा कर रहा हूं, लेकिन ये मेरे को डांट रहे। तो प्रभु राम क्या बोले, देखिए ये सब ये अपना सामर्थ्य के अनुसार अपना शक्ति के अनुसार सेवा कर रहा है, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार बड़े पत्थर उठा सकते हो, ये छोटा पत्थर उठा रहा है लेकिन वो सेवा तो कर रहा है ना। कहने का तात्पर्य ये है कि सभी भगवान का सेवा कर सकते हैं इस संसार में। कोई भौतिक विद्या में जितना बड़ा ज्ञानी हो, ज्ञानी नहीं भी हो, सभी भगवान के सेवा में लग सकते हैं। कहा जाता है ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तमा, जैसा जगन्नाथपुरी में उत्तर दिशा में एक बुढ़िया जगन्नाथ जी के लिए हर दिन खिचड़ी बनाती थी एवं जगन्नाथ जी को प्रार्थना करती थी, प्रभु आप खुद आके ये ग्रहण कीजिए खिचड़ी। तो जगन्नाथ जी अपने सिंहासन छोड़ के आके बूढ़ी माँ का अपने हाथ से गरम खिचड़ी खाते थे जगन्नाथ जी। तो एक बार ऐसा हुआ, एक कर्मकांडीय ब्राह्मण आ गया, बोले कि तुम नहाते नहीं कुछ नहीं, ऐसा ही जगन्नाथ जी के लिए खिचड़ी बना देते हो। तो जगन्नाथ वो अपने नियम बताना लगा, स्नान करना चाहिए, अच्छा बर्तन में ठाकुर जी के लिए भोजन करना चाहिए, भगवान को तुलसी पत्ता डालना चाहिए ठाकुर जी के भोग में, बहुत सारे नियम बताए। ऐसा नियम बताए कि मैंने जिस समय ठाकुर जी भोजन करके जाने वाले थे समय लेट हो रहा है, क्योंकि सुबह फिर जगन्नाथ जी का पट खुलेगा 4 बजे, उस समय जगन्नाथ जी सिंहासन में रहना चाहिए, लेकिन ये इधर खिचड़ी ये बना रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण बोल दिए अपने हिसाब से बना रहे हैं, मैंने वो जैसा बताया वो इस हिसाब से बना रहे हैं, इसलिए लेट हो रहा है। तो जगन्नाथ जी क्या किए, गरम गरम खिचड़ी भोजन करके तुरंत सिंहासन में है। तो पट सब पूरी ये जब पंडा जब ठाकुर जी का पट खोले, देखिए कि स्वयं मैंने जगन्नाथ जी तो ऐसा ही बैठे हैं जैसा हम ठाकुर जी जैसे सिंहासन में बैठते हैं, लेकिन आरती होने से पहले क्या होता है, साफ सफाई होता है, शायद कोई कुछ मैंने कुछ फूल गिरा है कि नहीं, ठाकुर जी का सिंहासन में कुछ धूल तो नहीं है। तो इसे साफ करने के टाइम में क्या हुआ, देखिए जगन्नाथ जी के हाथ में खिचड़ी लगा है, मुंह में खिचड़ी लगा है, तो आश्चर्य हो गए, मैं काल इतना सुंदर सेवा किया था आज कैसा ये खिचड़ी कहां से आया। तो जगन्नाथ जी स्वप्नादर्श दिए कि मेरा एक भक्त है उत्तर दिशा में एक कुटिया में वो रहती है, हर दिन मेरे लिए खिचड़ी बनाती है, मैं उसका खिचड़ी हर दिन खाने के लिए जाता हूँ, लेकिन एक ब्राह्मण अपने हिसाब से कुछ ऐसा नियम बताए ताकि समय के हिसाब से वो बना नहीं पा रहा है, इसलिए मैं तुरंत ऐसा ही चूल्हा में बैठा था, मैं उस तुरंत लेके उसको भोजन कर लिया।
भजन करके वही हाथ में आके बैठ गए। तो पंडित आश्चर्य हो गए, देखिए हम इतना सेवा कर रहे हैं फिर भी ठाकुर जी एक बुढ़िया के बुढ़ीमा के से अपने हाथ उसके घर में जाके खिचड़ी भोजन कर रहे हैं। तो जगन्नाथ जी बोले उसके हाथ का खिचड़ी में हर दिन भोजन करना चाहता हूं, एवं जब वो शरीर छोड़ देगा तो उसके नाम से इस यहां पे मंदिर में ठाकुर जी उनका नाम से खिचड़ी बनना चाहिए एवं उसके नाम से भी भजन बनना चाहिए एवं मैं वो खिचड़ी भोजन करूंगा। उस अभी भी आप जगन्नाथ मंदिर जाइए बोले मेरे को कर्माबाई का खिचड़ी चाहिए तो उनके नाम से अलग खिचड़ी बनता है। अभी भी ठाकुर जी भोजन कर रहे हैं उनका खिचड़ी। देखिए बुद्धि भौतिक ज्ञान नहीं है लेकिन प्रेम है भगवान के प्रति, श्रद्धा है, उसमें भगवान को हम बस बसीभूत कर सकते हैं। इस परोपा जी महाराज कहते हैं कि जो भगवान के भक्ति करने के लिए ज्यादा विद्वान बनने का जरूरत नहीं है। बुद्धि बुद्धि मताम अस्मिन तेजो तेजो सिनाम हम, कहा गया है भगवान बुद्धिमान मन का बुद्धि है, तेजस्वी का तेज है। जिसको भगवान बुद्धि देंगे उससे बड़ा बुद्धिमान कौन हो सकता है। जैसा ध्रुव महाराज 5 साल का बच्चे भगवान कृष्ण का स्तुति करने लगे, कैसा स्तुति करेंगे, उनके मुख से कुछ शब्द ही नहीं निकल रहा है। 6 महीना में भगवान को दर्शन किए, भगवान क्या किया अपने शंख केवल स्पर्श करा दिए तो अनर्गल ज्ञान उनके मुख से आ रहा है, जो कि बड़े बड़े विद्वान के मुख से ऐसा स्तुति नहीं कर सकते। क्यों? कहा जाता जिसका गुरु कृष्ण के प्रति निष्ठा है, प्रेम है, श्रद्धा है, अंदर से भगवान उसको ज्ञान प्रदान करते हैं। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, इसलिए भगवान कृष्ण को समझने के लिए केवल भक्ति ही एकमात्र आधार है। ब्रह्म सूत्र के नीति वचन कार्य कारण के अनुसार सुंदर रूप में व्यवस्थित है। क्षेत्र के ज्ञाता क्षेत्र के रूप में परमेश्वर की और उसके अधीन ज्ञाता के रूप में जीव की तथा कार्यकलापों के क्षेत्र की प्रकृति का यह वास्तविक ज्ञान है। वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र में इस सत्य की गवेषणा करनी होगी। श्रीमद् भागवतम अंतिम श्लोक में भगवान बता रहे हैं, पराशर मुनि का पुत्र व्यासदेव बता रहे हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणशनम प्रणमम दुख समनः तं नमामि हरि परम। वही नाम प्रभु को मैं प्रणाम कर रहा हूं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और नाम का उच्चारण करने से क्या होता है, भगवान के अपने हर प्रकार का कष्ट चला जाता है। व्यासदेव खुद बता रहे हैं जो जिह्वा से उच्चारण कर रहा है, नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणशनम, सर्व पाप प्रणशनम सभी पाप दूर हो जाता है भगवान का, जिसके जिह्वा से भगवान का नाम उच्चारण होता है। प्रणवम दुख समनः तं नमामि हरि परम। फिर द्वितीय स्कंद भागवत में कहा गया है, अपन्न संस्कृति घोर जन्नाम वसुनाम तदस्य तो विमुच्यते यदि वेति स्वयं भयम्। जो भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है साक्षात भय भी उसको भयभीत होता है। मृत्यु के नाम से व्यक्ति श्रवण करते ही भयभीत हो जाता है, वृद्धा बुढ़ापा का नाम सुनते ही भयभीत हो जाता है, लेकिन जो नाम उच्चारण कर रहा है साक्षात भय भी भयभीत हो जाता है। सभी शरीर में संसार में जो भी जन्म हुआ है उसका 6 परिवर्तन होता है, जन्म होता है, किशोर होता है, युवक होता है, कुछ बाय प्रोडक्ट करता है, बुढ़ापा हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, 6 प्रकार परिवर्तन होता है। लेकिन अगर नाम उच्चारण कर रहा है उसके जिह्वा से तो शरीर तो सबका जाता है, एक दिन नष्ट हो जाता है, लेकिन भगवान एक नूतन शरीर देते हैं, एक भक्तों का परिवार में देते हैं, वैष्णव के परिवार में देते हैं, जिससे वो बचपन से भक्ति कर सकता है। अगर इस जन्म में अगर पुनर्जन्म लाभ हो गया तो यही उसका लास्ट जन्म हो सकता है। देखिए व्यासदेव जो कि कृष्ण द्वैपायन व्यास, भगवान कृष्ण का ही अवतार है, सत्यावेश अवतार व्यासदेव, खुद भगवान कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, नाम का गुणगान कर रहे हैं। इतिचांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। प्रभुपाद जी महाराज बताते हैं जो भगवद गीता का एक श्लोक भी समझ लिया उसका जीवन सफल हो गया। देखिए हमारा विश्वास कैसा आता है भक्ति में, भगवान के प्रति विश्वास श्रद्धा कैसा हमारा, क्या है इस संसार में व्यक्ति का भगवान के प्रति श्रद्धा है लेकिन विश्वास नहीं है। श्रद्धा है चलो भगवान को मंदिर आएंगे, भगवान को दर्शन करेंगे, कथा सुनेंगे, श्रद्धा है लेकिन फेथ नहीं है। विश्वास के साथ आए सत्संग करने से, अगर निष्ठा के साथ शुद्ध भक्तों के मुखारविंद से हरि गुरु वैष्णव का आश्रय लेके अगर गीता का श्रवण किया जाए तो भगवान की कृपा से, गुरु का कृपा से, हम हृदय से भगवान परमात्मा रूप में जो बैठे हैं हमको दृढ़ता बढ़ाते हैं। हमारा खुद का शक्ति से, खुद का बुद्धि से हमारा कभी भी नहीं हो सकता। भक्ति के लिए माध्यम क्या है, कृपा चाहिए। अशोक अभय अमृत आधार तुम्हार चरण द्वय तहत एक न विश्राम लभ्या चाड़िनु भवेर भय। जहां पे शोक नहीं है, जहां पे भय नहीं, जहां पे मृत्यु नहीं, वो स्थान है भगवान का चरण कमल। एक शस्त्र दबगी पूत गीतं एक पुत्र दबगी पुत्र एव एक मंत्र तस्य नमानि जानि कर्मात्मनस्य देवस्य सेवा। दबगी का पुत्र कौन है, भगवान कृष्ण, उनके मुखारविंद से जो निकला है वो एकमात्र शास्त्र है। एक पुत्र दबगी पुत्र एव एक मंत्र, जो भगवान का जो हरे कृष्ण महामंत्र कलिजु का प्रेस्क्राइब मंत्र है। भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है कृष्ण आज से 500 साल पहले आके प्रचार किए, उनका सेवा ही एकमात्र श्रेष्ठ धर्म है। लेकिन हमारा क्या है, विश्वास नहीं है। जैसे ध्रुव प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं भागवतम में, जैसा 6 महीना में ध्रुव महाराज भगवान को दर्शन किए थे, उसी प्रकार इस संसार में भी व्यक्ति भगवान का निष्ठा के साथ भक्ति करके 6 महीना में दर्शन कर सकता है। लेकिन हमारा विश्वास नहीं है। कब होगा, जब बार बार हम श्रवण कीर्तन करेंगे तब भगवान प्रति निष्ठा आता है। भगवान क्या आनंदमय है, आनंदमय को पाना है हमको, तो हमको भी जैसा एक एक बच्चा आग में, एक घर में आग लग गया है, उसके अंदर बच्चा है, उसको हमको लाना है तो कैसा ला सकते हैं, हमको फायर प्रूफ ड्रेस चाहिए तब हम बच्चा को निकाल सकते, हमारा शरीर जल जाएगा। उसी प्रकार हम भगवान कृष्ण के पास जाने के लिए हमको आनंद अपने को ट्रांसेंडेंटल करना पड़ेगा, अपराकृत करना है। जैसा एक कोई व्यक्ति के घर में अगर आग लग गया है, बाजू में कोई व्यक्ति नहीं है उसको बचाने के लिए, सडन एक कोई विदेशी कोई दूसरे देश का कोई व्यक्ति वहां से जा रहा है, वो उसको मदद मांग रहा है, उसको उसका भाषा मालूम नहीं है लेकिन उसका जो भाव है, उसका जो रिएक्शन, उसका शरीर का जो भाव है, उसको देख के वो समझ लेता है कि वो मेरे से क्या उम्मीद कर रहा है कि नहीं। कोई बाजू वाला व्यक्ति इसको उसके बारे में भाषा मालूम नहीं, उसके साथ बात नहीं कर सकता लेकिन उसका जो व्यवहार, उसका हाव भाव, उसका एक्टिंग देख के उसको पता चल जाता है। हो सकता है दूर देश का हो, है कि नहीं, आग जल रहा है उसको मदद मांग रहा है, उसका देख के, उसका रूप देख के, उसका भाव देख के उसको पता चल जाता है। उसी प्रकार हमारे हमारा जो स्थिति है, हम कौन सा भाषा का है, कौन सा जाति का है, कौन सा देश का है, भगवान इसको नहीं देखते। हमारा स्थिति क्या है, हम आत्मा है, भगवान कृष्ण का अंश है, ये शरीर एक हमको मिला है कर्म के अनुसार, किसी को भारत में, किसी को पाकिस्तान में, किसी को लंदन में, किसी को बॉम्बे में शरीर, लेकिन सभी भगवान कृष्ण का अंश विशेष है। अंश का कर्तव्य क्या है, पुण्य के साथ संपर्क स्थापन करना। बच्चा जैसा पिता माता के आश्रय में ही सुख रह सकता है। भगवान गीता में कह रहे हैं, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, मैं ही तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा माता हूं अर्जुन, तुम मेरा शरणागत हो जाओ, मेरे से प्रिय संसार में तुम्हारा कोई नहीं है। देखिए, इसलिए हमको एक भक्तों के मुखारविंद से अगर भक्त भगवान का लीला गुण श्रवण कीर्तन करेंगे तो भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ेगा। अर्जुन का भी प्रथम विश्वास नहीं हो रहा था, कितना भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को, भगवान माध्यम का, अर्जुन तो भगवान का प्रिय भक्त हैं, लेकिन अर्जुन को भगवान माध्यम के रूप में जगत को शिक्षा दे रहे हैं, उनको माध्यम ले करके। जो अर्जुन गांडीव धनु हाथ से गिर गया, हाथ कांप रहा है, भगवान ऐसा उनको ज्ञान दिए, अर्जुन क्या बोले, करिष्य वचनम तव, हे प्रभु आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। देखिए उनका मोह चला गया, जो पितामह भीष्म को देख के, गुरु द्रोणाचार्य को देख के, अश्वत्थामा को देख के, धनुष नीचे रख के जाने के लिए तैयार हो गए थे संन्यास लेने के लिए। भगवान क्या बोले, अर्जुन तुम संन्यास नहीं ले सकते, जंगल में तुम ध्यान नहीं कर सकते, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे रोम रोम में क्षत्रिय का गुण है, अगर आंख बंद करोगे तो कैसा मैं तीर चलाऊंगा वही सोचोगे, तुम कभी स्मरण नहीं कर सकते मेरे को, इसलिए तुम्हारा जो कर्तव्य है, क्षत्रिय का गुण क्या है, युद्ध च प्राणम, युद्ध करेगा, युद्ध करते करते अगर प्राण भी चला जाए तो क्षत्रिय क्या करता है, उसका स्वर्गलोक लाभ होता है, अगर जीतेगा तो अक्षय राज्य का राजा हो सकता है। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन तुम अगर विजय लाभ करोगे तुम हस्तिनापुर का साम्राज्य का अधिकारी बन सकते हो, तुम अगर परास्त मृत्युवरण करोगे तो स्वर्ग लाभ, क्योंकि धर्म युद्ध है, लेकिन अगर भयभीत होकर चले जाओगे तो अर्जुन तुम अगर युद्ध नहीं करके चले जाओगे तो दुर्योधन कभी नहीं सोचेगा कि ये मेरे प्रति ये दया के वजह से चला गया, वो सोचेगा कि डर के मारे चला गया, एवं क्षत्रियों के लिए इसी प्रकार अपमान मृत्यु से मृत्यु के बराबर है, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य तुमको युद्ध करना, सब कुछ भगवान ज्ञान दिए एवं अर्जुन बाद में भगवान को स्वीकार किए। इसलिए कहा गया, जत्र जोगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय ध्रुवा नितिर मतिर मम, जहां पे भगवान कृष्ण रहते हैं उनके सखा अर्जुन रहते हैं अर्थात उनके प्रिय भक्त रहते हैं, वहां पे मान सम्मान धन ऐश्वर्य लाभ पूज्य मैंने जस सब कुछ आ जाता है। जो भक्ति करता है भगवान उसको सभी प्रकार ज्ञान देते हैं, सभी उसको सम्मान करते हैं, सभी प्रकार दैवी गुण उसके प्रकट हो जाता है, क्योंकि वो भगवान के साथ कनेक्ट है। इसलिए जो आनंद का सोर्स है, पुण्य मद पुण्य विद पुण्य पुण्य मदच्यते पुण्य पुण्यमादाय पुण्यमेव वशिष्यते, भगवान पूर्ण है, एवं उनका अगर हम कोई थोड़ा सा भी अगर भगवान प्रति हमारी श्रद्धा है विश्वास बढ़ाएंगे तो वही हमको भयंकर स्थिति से रक्षा कर सकता है। इसलिए सभी को अनुरोध है, सुबह हो शाम हो, कम से कम हफ्ता में एक ही दिन भी हो, मंदिर आके सत्संग करना चाहिए, भगवान कथा श्रवण कीर्तन करना चाहिए, भगवान को दर्शन करना चाहिए, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, इसी में ही हमारा स्पिरिचुअल फूड है, ये आध्यात्मिक आहार है, जितना हम इसको ग्रहण करेंगे उतना हमारा चेतना का शुद्ध हो सकता है। चेतो दर्पण मार्जनम, जैसा आईना है उसमें धूल लगा हुआ है, अपना चेहरा नहीं देख सकते, उसको साफ करना पड़ता है, उसी प्रकार हमारे मन रूपी आईना में दर्पण में बहुत सारा धूल लग गया है, कामना वासना इच्छा का बहुत सारा है, उसको साफ करने के लिए भगवान कृष्ण का शरणागत, जैसा अर्जुन भगवान को स्वीकार किए, ऐसा हम शरणागत हो जाएंगे तो हमारे जीवन सफल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो कलिजुग का सबसे सरल एवं श्रेष्ठ माध्यम है भगवान को प्राप्त करने के लिए, क्या, भगवान का नाम का उच्चारण करना, भगवान का कथा श्रवण करना, भगवान को दर्शन करना, भगवान का प्रसाद पाना, इसी में ही हमारा चित्त शुद्ध हो सकता है। तो कलिजुग का जो युग धर्म है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस कभी भी हम ये नाम अपने जीवा से उच्चारण करेंगे तो इसके लिए कोई भी नियम नहीं है, कभी भी हम उच्चारण कर सकते हैं एवं ये हमको हर समय प्रोटेक्शन दे सकता है।
हरे कृष्णा।
जय भगवत बाणी श्रीमद भगवत गीता की। राज राजेश्वरी भगवान की। सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी महाराज की। श्री श्री गोनिताय भगवान की। श्रील प्रभुपाद की। निताय गौर प्रमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।